पेश है आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। कार्य क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली कोरोना परीक्षणों को मिलेगी टैक्स में छूट। भारत में एकल खुराक वाले स्पुतनिक लाइट कोरोना रोधी टीके को मिली मंजूरी। और जस्टिन लैंगर ने दिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कोच पद से इस्तीफा। और अब खबरें विस्तार से। फेडरल कोषाध्यक्ष जॉश फ्राइडनबर्ग ने घोषणा की है कि कार्य क्षेत्र में व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा प्रयोग होने वाले कोविड 19 परीक्षण टैक्स में कटौती के लिए योग्य होंगे। ये नए प्रस्तावित बदलाव साल 2021 की शुरुआत से 2022 तक लागू होंगे और दोनों PCR और रैपिड एंटीजन जांचों के लिए मान्य होंगे। इसका मतलब यह होगा कि एक कामगार जिसे 32.5% की दर से टैक्स भरना होता है वह $20 की दो रैपिड एंटीजन जांच किट के पैक पर $6.50 का टैक्स वापस पा सकता है। श्री फ्राइडनबर्ग का कहना है कि यह जांच किटें व्यवसायों के सुचारू रूप से चलने के लिए अति आवश्यक हैं।
रैपिड एंटीजन टेस्ट्स फॉर वर्क रिलेटेड पर्पसेस विल नाउ बी कंप्लीटली टैक्स डिडक्टेबल एंड द फ्रिंज बेनिफिट्स टैक्स विल नॉट अप्लाई टू बिजनेसेस हु सप्लाई दोस रैट टेस्ट्स टू देयर वर्कर्स।
इसी के साथ सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए ये भी कहा कि 21 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए देश की सीमाएं फिर खोल दी जाएंगी। लगभग 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में पर्यटक लौट सकेंगे। न्यू साउथ वेल्स में आज से गैर जरूरी वैकल्पिक सर्जरी फिर शुरू हो जाएंगी। इन सर्जरियों को 10 जनवरी से रद्द कर दिया गया था ताकि अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए जगह बनाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ब्रैड हजार्ड का कहना है कि निजी अस्पताल और सरकारी स्वास्थ्य तंत्र अब एक साथ मिलकर महामारी से पहले होने वाली सर्जरी के 75% क्षमता पर वापस आना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने उन लोगों का धन्यवाद अदा किया जिन्होंने इस दौरान अपनी सर्जरी को रद्द किया।
I know it's pretty tough, particularly if you've got a knee that's bothering you or a hip or one of the items of surgery, cataract surgery, one of the items that has had to be put off for a few weeks. I apologize on behalf of the health system, but I also know that each of us would understand that in a 100-year pandemic we've had to take measures that allowed for the possibility of those patients coming into our system.
यह तब आता है जब राज्य में आज 14 कोरोना संबंधी मृत्यु और 7,437 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। न्यू साउथ वेल्स में 2,099 कोरोना संक्रमित अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 137 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। विक्टोरिया के टीकाकरण अभियान में आज एक नई उपलब्धि दर्ज की गई है। राज्य के 5 से 11 साल के 50% बच्चों को अब कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक प्राप्त हो चुकी है। डिप्टी प्रीमियर जेम्स मर्लिनो का कहना है कि ये एक सकारात्मक बढ़त है, लेकिन अब भी विक्टोरियाई जनता को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय किया जाना है। यह तब आता है जब राज्य में 7 कोरोना संबंधी मृत्यु और 8,275 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। श्री मर्लिनो ने विक्टोरियाई निवासियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया है।
Over the next 7 days, there are 107,000 appointments available. So please, if you haven't had your third dose, if your child hasn't had their first pediatric dose, please make an appointment either at our state-run clinics or via our GPs and our community pharmacies.
क्वींसलैंड में अब लोगों को अलग अलग स्थानों पर जाने के लिए चेक इन करना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि टीकाकरण का प्रमाण पत्र अब भी उन जगहों के लिए अनिवार्य होगा जो इसकी मांग करते हैं। राज्य में आज 19 कोरोना मृत्यु दर्ज की गई हैं। 663 कोरोना मरीज राज्य के सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से 41 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। प्रीमियर अनास्तासिया पलाशे का कहना है कि स्वास्थ्य अधिकारियों की यह राय है कि अब क्वींसलैंड कोरोना मामलों के चरम से नीचे आ रहा है। दूसरी तरफ तस्मानिया में बच्चे बुधवार को स्कूल लौटने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य में आज 443 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। प्रीमियर पीटर गटविन का कहना है कि अभिभावक निश्चिंत होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं क्योंकि सभी कक्षाएं पर्याप्त हवादार होंगी और पढ़ाने के लिए बाहर की जगहों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा।
Construction now for a number of months. We've had an acting minister in place, and parents can have confidence that the plan has been developed and implemented and that our schools are ready to go when their children return on Wednesday.
उन्होंने साथ यह भी बताया कि शिक्षा मंत्री सारा कोर्टनी जो फ्रांस में अपनी छुट्टियों के दौरान कोरोना संक्रमित हो गई थीं गुरुवार से काम पर लौट सकेंगी। पूर्व विदेश मंत्री बॉब कार ने रक्षा मंत्री पीटर डटन से मांग की है कि वे प्रधानमंत्री के खिलाफ भेजे संदेशों के लीक होने के प्रकरण में अपना नाम साफ करें। श्री कार का दावा है कि श्री डटन ने ही वो संदेश लीक किया था जिसमें एक अनामित लिबरल मंत्री ने प्रधानमंत्री को कंप्लीट साइको कहा था। इन संदेशों में कथित तौर पर यह भी दिखता है कि न्यू साउथ वेल्स की पूर्व प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजिक्लियन ने प्रधानमंत्री को खराब, बहुत खराब इंसान कहा जिन पर वे विश्वास नहीं कर सकती। सुश्री बेरेजिक्लियन को ऐसे संदेश भेजने की कोई बात याद नहीं है। श्री कार ने एक ट्वीट में कहा कि श्री डटन केवल उस परिस्थिति में अपना नाम साफ कर सकते हैं जब वे किसी और सहकर्मी को ये इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने के लिए मना लें। दूसरी तरफ तस्मानिया की लिबरल सांसद ब्रिजिट आर्चर का कहना है कि वे संसद में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बिल के खिलाफ वोट करेंगी। इस बिल पर बहस अब भी जारी है। बास सांसद का कहना है कि वे इस कानून का उसके वर्तमान स्वरूप में समर्थन नहीं कर सकती हैं। उनका कहना है कि ये राज्य के उन कानूनों को दरकिनार कर देगा जो LGBTQI+ छात्रों का रक्षण करते हैं। यह तब आता है जब विपक्ष ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वे इस बिल में संशोधन कर ये सुनिश्चित करें कि कोई भी छात्र अपनी यौन पहचान या लैंगिकता के आधार पर निष्कासित नहीं किया जाएगा। लेबर की संचार प्रवक्ता मिशेल रॉलैंड का कहना है कि जहां उनकी पार्टी अब भी इस बिल की समीक्षा करने वाली समितियों के सुझावों पर विचार कर रही है, छात्रों की सुरक्षा को उनका पूर्ण समर्थन प्राप्त है।
We would want to examine this very carefully. This is a complex area and one that has been obviously deeply scrutinized by people who have particular views on this, a very wide variety of evidence presented. So exactly as you said, we would be guided by those principles, but how that manifests itself in the amendments, we will consider those through our normal caucus processes.
नॉर्दर्न टेरिटरी में किशोर अबोरिजिनल की हत्या के आरोप में पुलिस अधिकारी पर चलने वाला मुकदमा अब आखिरकार कोरोना नियमों के साथ सुनवाई के लिए पेश हो रहा है। कांस्टेबल जैकरी रॉल्फ ने नवंबर 2019 में हुई कुमानजई वॉकर की हत्या के मामले में खुद को निर्दोष बताया है। 19 वर्षीय वॉकर की कथित रूप से 3 बार गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डार्विन में सुप्रीम कोर्ट आज से इस मामले की सुनवाई कर रही है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूक्रेन के विदेश मंत्री दुमित्रो कुलेबा ने लोगों को रूस द्वारा आक्रमण के भयानक कयास लगाने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि यूक्रेन के पास एक सशक्त सैन्य बल है, अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है और अपने देश में विश्वास है। उन्होंने आगे कहा, हमें दुश्मन से नहीं, दुश्मन को हमसे डरने की आवश्यकता है। एक हफ्ते पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन डूबता टाइटैनिक नहीं है और साथ ही उन्होंने अमरीकी मीडिया और सरकार पर तनाव का माहौल बनाने का आरोप भी लगाया था। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि रूस फरवरी मध्य तक यूक्रेन पर कब्जे की पूरी तैयारी कर सकता है। उनका कहना है कि मॉस्को आवश्यकता का 70% सैन्य बल जुटा चुका है और अगर यह युद्ध हुआ तो 50,000 नागरिक और 25,000 यूक्रेनियाई सैनिक अपनी जान गंवा सकते हैं। और अब खबरें भारत से। भारत में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ रही है और कोरोना के दैनिक मामले में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 83,876 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये एक महीने बाद है कि देश में 1,00,000 से कम दैनिक मामले सामने आए हों। कल की अपेक्षा कोरोना के मामलों में 22% की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही पिछले 24 घंटों में 895 लोगों की मौत दर्ज की गई है। हालांकि इसमें से 378 मौतों का बैकलॉग केरल से आया है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को बताया कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में कोविड रोधी एकल खुराक वाले टीके स्पुतनिक लाइट के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। कुछ वक्त पहले सामने आए एक अध्ययन में दावा किया गया था कि स्पुतनिक वी टीका और इसकी एक खुराक वाले स्पुतनिक लाइट बूस्टर टीके ने कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन स्वरूप के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदर्शित की है। भारत के केंद्रीय दवा प्राधिकरण ने एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद ये कदम उठाया है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 52.87 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 71 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। क्रिकेट खिलाड़ी जस्टिन लैंगर ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच के कार्यकाल के दौरान मूल्यों के प्रति उनके सम्मान को कुछ लोगों ने बहुत कड़ा समझा। लैंगर को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा संक्षिप्त अनुबंध विस्तार की पेशकश भी की गई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और इस पद से हटने का फैसला लिया। लैंगर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अधिकारियों से अपने इस्तीफे पत्र में माफ़ी मांगी, लेकिन जोर दिया कि वे ईमानदारी, सम्मान, भरोसा, सच्चाई और प्रदर्शन को महत्व देते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी इस कार्यशैली को सख्ती मान लिया। और अंत में एक नज़र कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल धूप ही धूप रहेगी, यहाँ अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में धूप छांव का मौसम रहेगा, यहाँ अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में तेज धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, यहाँ अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में हल्की बौछार पड़ सकती है, अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 30 जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल तूफान के साथ बरसात की आशंका है, अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप ही धूप है, दिल्ली का अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।